प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
इस सप्ताह के श्रोता हैं भाडापारा से हरमिंदर सिंह चावला और इनसे बातचीत कर रहे हैं सुनील चिपड़े।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो। और अर्पा रेडियो की कोशिश ये होती है लगातार कि श्रोताओं के साथ बातचीत की जाए, श्रोताओं को जोड़ा जाए अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से। आज जो हमारे साथ श्रोता हैं वो हैं हरमिंदर चावला जी और आप हैं भाटापारा से। हरमिंदर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
जी हरमिंदर जी, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं, क्या क्या शौक हैं आपके?
जी मैं मेडिकल व्यवसायी हूँ और वर्तमान में भाटापारा में मेरी मेडिकल की शॉप है। और ये तो बिजनेस का हो गया।
हाँ, जी,
और गीत संगीत में रुचि है, वही एक रेडियो से जुड़ाव का कारण भी है।
अरे वाह।
और कॉलेज के दिनों में रंगमंच से भी काफी जुड़े रहे।
व्यवसाय है आपका मेडिकल शॉप का, ये पुश्तैनी रहा है या आपने शुरू किया था?
नहीं नहीं, पुश्तैनी में तो हमारी सर साइकिल की शॉप रही है। मुझे पैतृक व्यवसाय के रूप में साइकिल दुकान में ही बैठने का अवसर मिला था शुरुआत में।
अच्छा।
और उस समय के परिवेश में था सर, जब गांव में कोई भी आयोजन या किसी घर पे किसी के छट्टी का या विवाह का आयोजन, उस समय लाउड स्पीकर ही एक शोभा हुआ करते थे। और बारात के लिए जो आजकल तरह तरह के डेकोरेशन जो चलते हैं, उस समय पेट्रोमैक्स चलती थी, गैस बत्ती जिसको हम लोग बोलते थे। उस समय भी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और लाउड स्पीकर के माध्यम से संगीत की रुचि वहां से भी मतलब फली फूली है समझ लीजिए मेरे जीवन में।
पहले ये हुआ करता था कि साइकिल शॉप के साथ साउंड सर्विस का भी काम हुआ करता था।
जी
तो वैसा ही कुछ था आपका भी?
जी।
अरे वाह, उस समय क्या उम्र रही होगी जब आप साइकिल शॉप में जाते थे?
ये सर मेरी करीब 12 से 13 वर्ष की उम्र थी। और क्या है, घर के निकट होने की वजह से कुछ भी काम के लिए दुकान पर आना जाना रहता था, तो थोड़ा थोड़ा देर समय वहाँ पे रुकना या व्यतीत करना, तो वो जुड़ाव थोड़ा थोड़ा बिजनेस के वहीं से ही शुरू हो गए थे।
जी जी। और पेट्रोमैक्स का जो कंदिल होता था, पेट्रोमैक्स जो है वो, उसकी जी, क्या यादें हैं आपके साथ? मतलब लोग किस तरह से आते थे लेने, उस समय क्या किराया होता था उसका?
सर उस समय तो 2 रुपए से 5 रुपए प्रति रात का उसको काउंट किया जाता था। दिन में भी कोई लौटा जाता था। जितनी रात के लिए रखा गया है उसको
जी,
उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता था। 2 से 5 रुपए तक का उसका किराया होता था। और जिसमें ये भी ऑप्शन होता था कि भाई हम मट्टी तेल उस पे टैंक फुल करके दे रहे हैं, तो आप लौटाते समय उसको फुल करके देंगे।
और उसका फिलामेंट खराब हो जाए तो?
हाँ, वो मेंथल वगैरह जो मेंथल बोलते थे उसको। हाँ, मेंथल बोलते थे।
हाँ, जी जी।
तो हाँ, वो यदि टूट गया है या उसमें छेद हो गया है तो उसकी कॉस्ट अलग से देनी होती थी।
तो उसका वो मेंथल आपने कभी बदला है?
जी जी, बहुत बहुत अच्छे से सर, आपने तो मतलब ये विषय निकाल के मेरी को पुराने 3 दशक पूर्व 3 से 4 दशक पूर्व पिछली बचपन की यादों की तरफ लेकर चले गए आपको।
वाकई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये दौर देखा है, किराए की साइकिल लेना या साउंड सर्विस का इस्तेमाल करना। मतलब उस समय जब साइकिल दुकान में साउंड सर्विस होते हुआ करती थी तब, और पेट्रोमैक्स लेकर के जाना, छट्टी बारात इन सब में लेकर के जाना, अलग ही बात थी वो
जी।
और मेडिकल व्यवसाय में कैसे शिफ्ट हुए?
हाँ सर, क्या हुआ कि परिवार में ऐसा हुआ कि छोटे भाइयों के लिए व्यवसाय के लिए कुछ विकल्प चुनने थे, तो मेरे पास फार्मेसी की डिग्री थी।
अच्छा।
तो घर परिवार में निर्णय हुआ कि भाई आप मतलब उस डिग्री के हिसाब से अपने लिए व्यवसाय का चयन करें। और मेरे भाई लोग थे मुझसे अनुज जो,
जी,
तो उन लोगों को व्यवसाय के लिए कोई ना कोई ऑप्शन उनको भी देना था। फिर मैंने अपने डिग्री के लिए फिर मैंने मेडिकल को ही चुना और 1992 से मैं मेडिकल का व्यवसाय कर रहा हूँ यहाँ भाटापारा।
मेडिकल स्टोर यदि कोई युवा खोलना चाहे, फार्मेसी की डिग्री उसके लिए कितनी जरूरी है और उसके लिए क्या सलाह आपकी होगी?
मैं तो यही कहूँगा कि युवा लोग फार्मेसी एक कोर्स है, उससे जुड़े हैं फार्मेसी करके बिल्कुल निश्चित रूप से इस व्यवसाय के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। इस व्यवसाय के लिए मतलब मेरी जो एक अपनी जो परिकल्पना रही है, वैचारिक शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है।
क्या बात है।
क्योंकि जो भी पेशेंट या जो भी डॉक्टर का पर्चा लेकर आता है, हम उसके साथ में डिप्लोमेसी करेंगे या कुछ भी ऐसा जो अभी वर्तमान परिवेश में जो अपन ने देखा कुछ माह पूर्व, अपन ने हर संचार माध्यम से सुना है और कई बार हम लोगों को भी टेलीफोनिक जैसे संपर्क हुए अपने ही इष्ट मित्रों के बीच से, किसी परिवार से बीमारी जो महामारी अभी विगत माह से ये सब देखी है सुनी है, तो उसमें जो एक छवि खराब करने का प्रयास किया गया है मेडिकल व्यवसायियों की, तो वो कहीं ना कहीं मन को पीड़ा देती है। एक ऐसा व्यवसाय जिसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाए, दुखद घटना से अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा उसे।
जी जी, ये अभी जो समय था, अभी जो समय है कहना चाहिए,
जी 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 जी,
वो काफी कठिन समय है। मतलब किसी को ठीक से कभी इलाज नहीं मिल पाया, कभी किसी को दवाई नहीं मिल पाई, व्यवस्था की कई खामियां रही इस दौरान। तो वो एक अविश्वास जो पसरा, वो सारे व्यवसाय को उसने छुआ और हर आदमी को भी छुआ उसने,
है ना।
ऐसे समय में हम सबकी जरूरत है कि उस अविश्वास को तोड़ें और सहभागिता की बात करें। इस नोट पे बताइए हरमिंदर जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे इतनी बातचीत के बाद?
सर मैं इसी विषय से आगे जोड़ के कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ।
जी जी जरूर, तो जोड़िए।
इस समय जो कोरोना काल था, जिसमें बहुत बहुत ज्यादा संक्रमण हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में और हमारे आसपास के अंचल में बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो उस समय घर परिवार में हमेशा एक बात रहती थी कि भाई आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि संक्रमित पेशेंट्स आपके संपर्क में आते हैं और आप यदि उनके साथ में सावधानी से नहीं कर पाओगे डील, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव दुष्प्रभाव आपके शरीर पे भी पड़े। तो घर परिवार के लिए बहुत चिंता एक लाजमी है, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है।
बिल्कुल।
कुछ जो गीत हैं वो मतलब एक ऊर्जा देते हैं ऐसे मोड़ में। हालांकि कहीं मैं इस गीत को अपने जीवन से जोड़ता नहीं हूँ, पर हाँ ये जरूर है कि उस वक्त में, उस हालात में इस गीत ने मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा दी थी और यही मेरी पसंद का पहला गीत है। फिल्म हरिश्चंद्र तारामती से हेमंत कुमार जी की आवाज है, कवि प्रदीप की रचना है ये। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते हैं।
जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे, लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा, अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा, जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना।
हरविंदर जी, ये गीत अभी हमने सुना और वाकई अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है उसमें हमने देखा है कि लोगों ने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हॉस्पिटल स्टाफ को फ्रंटलाइन वर्कर तो माना, लेकिन आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं वो इस गिनती में नहीं आ पाए कि हाँ ये भी फ्रंटलाइन वर्कर है करके। ये एक बड़ा गैप रह गया शायद, आपसे बातचीत करते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ उनके पास भी तो दिन भर लगातार मरीज आते रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर के पास इतने मरीज नहीं गए होंगे, शायद एक मेडिकल शॉप में उतने मरीज जाते हैं दिन भर में।
बहुत दुखद पहलू रहा सर, और कहीं न कहीं दिल को बहुत दुख और पीड़ा पहुंचाती है ये बातें कि हम लोगों की सेवाओं को बहुत छोटे रूप में लिया गया, चाहे वो टीकाकरण की बात हुई हो या सावधानी समय की बाध्यता की बात हुई हो। हमने प्रशासन से अपनी कुछ बातें रखी थी कि भाई हमें भी उस वर्ग में शामिल किया जाए
जी,
और कम से कम हमें टीकाकरण का मतलब प्राथमिकता दे के हमें इस चीज से और हमारे स्टाफ को थोड़ा सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए
जी।
लेकिन वो ठीक पता नहीं क्यों प्रशासन ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। चलिए ये दुख और पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन चलिए अभी भी यदि शासन प्रशासन जागे और समझे इस बात को और हम लोगों की सेवाओं को यदि सराहा जाए, हमें कोई मेडल की आवश्यकता नहीं है लेकिन मानसिक शांति, सुरक्षा की आवश्यकता, थोड़ी मानसिक शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं
जी। जी चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से, अरपा रेडियो के माध्यम से, हम शायद कोई प्रशासक यदि सुन रहे हो या ऐसे व्यक्ति जो प्रशासक तक बात पहुंचाने की हैसियत रखते हो वो यदि सुन रहे हैं तो जरूर इस बात को पहुंचाएं। हरविंदर जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गीत संगीत रेडियो से लगाव आपका कैसे शुरू हुआ?
मतलब बचपन के 4 से 5 वर्ष की उम्र की बात है कि जब मनोरंजन का एक साधन, एकमात्र साधन रेडियो हुआ करता था। घर में जैसे बड़ी बहन है, हमारी बुआ जी वगैरह हैं, उनको रेडियो सुनने में काफी रुचि थी, तो उस समय उनसे कई बार वो जो बाल वाले रेडियो चलते थे उस समय, तो लोगों से ट्यून नहीं हो पाते थे।
अच्छा।
कई बार प्रयास करने के बाद में वो डिस्टरबेंस उनको मिलना और साफ नहीं आना। उस समय फिर ये है कि उनसे ये कहना कि लाइए मैं प्रयास करता हूँ, मैं इसको सेट करके देखता हूँ, ट्यून करके देखता हूँ, तो उसमें जब सफल हो जाते थे तो ऐसा था कि रेडियो जब चलता था तो कहीं ना कहीं अपना भी जुड़ाव उससे बढ़ता गया धीरे धीरे।
क्या बात है, मतलब बुआ और दीदियों के लिए रेडियो ट्यून करने से अब हरमिंदर जी एक सक्रिय रेडियो श्रोता है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, तब उस समय जब रेडियो पे भाटापारा का नाम गूंजा करता था हमारे वरिष्ठ साथियों के नामों के साथ में, तो ऐसा लगता था क्यों ना हमारा नाम भी रेडियो से आए। यही एक जुनून और एक यही एक आकर्षण था जिसने रेडियो के प्रति हमें आकर्षित किया।
दौर बदलते जा रहा है, बड़े बड़े स्टेशन होते थे रेडियो के, अब उसके साथ साथ कम्युनिटी रेडियो भी आ गया है, वेब रेडियो भी आ गया है, जो माध्यम आज हमारा है जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, अरपा वेब रेडियो एंड अरपा कम्युनिटी रेडियो पे। तो अरपा के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, अरपा के साथ लगाव का क्या कारण रहा आपका?
देखिए, वर्तमान में जो अरपा रेडियो की जो कार्यक्रम है और जो उनके प्रसारण का क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत करीब से ही है, इससे हमें भी जुड़ने का अवसर मिला और अच्छे कार्यक्रमों का समावेश किया जा रहा है, निरंतर अच्छा प्रयास किया जा रहा है रेडियो अरपा के द्वारा। उसके लिए मैं अरपा रेडियो के पूरे परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से।
शुभकामनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और बस हम यही चाहेंगे कि यूं ही अरपा रेडियो से जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते भी रहें, ये भी कोशिश हम सब की हो। जोड़ने जुड़ाने वाली बात के साथ कौन सा गीत इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे आप?
जैसे मेरा रेडियो से जो रिश्ता है, एक अनाम सा रिश्ता है, इसको कोई नाम मैं नहीं दे सकता हूँ, तो इसके लिए एक लता जी की आवाज में खामोशी फिल्म का गीत है, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू,
क्या बात है,
प्यार से छू के रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो।
हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने,
संगीत के इस एहसास का ये गीत आपके माध्यम से अभी हमने सुना। और हरमिंदर जी, आगे एक बातचीत बढ़ाने के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आप भाटापारा में रहते हैं, और भाटापारा रायपुर बिलासपुर इन सब के बीच में एक जगह है कहना चाहिए, है ना?
जी जी।
तो आप अपने क्षेत्र को लेकर के क्या देख पाते हैं, भाटापारा की क्या खासियत आप आज रेडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे?
सर, एक तो ये बॉम्बे हावड़ा की मेन जो लाइन है उसमें रायपुर और बिलासपुर के मध्य स्थापित है ये रेलवे स्टेशन भाटापारा। और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे, अभी कोरोना काल को यदि हम लोग छोड़ दें तो यहाँ हमेशा कोई ना कोई धार्मिक आयोजन बृहत रूप में होते हैं।
अच्छा।
इसलिए यहाँ के वासी जो है भाटापारा के, इसको धर्म नगरी के नाम से भी मतलब पुकारते हैं। ये भाटापारा एक धर्म नगरी है, यहाँ विविध प्रकार के आयोजन हर समाज के और उसके बहुत अच्छे रूप में होते हैं। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये भाटापारा पृथक मतलब जब अविभाजित मध्य प्रदेश का जब हिस्सा हुआ करता था तब यहाँ की मंडी बहुत ही हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडियों में गिनी जाती थी। और जब आकाशवाणी रायपुर से चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होता था और अंत में जब मंडी के भाव बताए जाते थे तो उस मंडी भाव में भाटापारा का नाम सुन के बहुत ज्यादा मतलब अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती थी कि हम लोग उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ की मंडी मतलब इतनी ख्याति प्राप्त है। तो बहुत सारी चीजें हैं आसपास, कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं उस लिहाज से। मतलब
दर्शनीय स्थल में कौन कौन सी जगह हैं आसपास?
यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे मावली माता का मंदिर है जो बहुत ही दूर दूर तक प्रसिद्ध है और नवरात्रि के मेले के समय में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ के जो प्रसिद्ध ताहूदार हुआ करते थे नव कल्याण, यहाँ से बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर एक तरेंगा गांव है, वहाँ के वो मालगुजार थे और उन्हीं के नाम से ही जो पूर्व में डीके हॉस्पिटल रायपुर में स्थापित हुआ था वो हमारे क्षेत्र के ही दाऊ कल्याण सिंह जी की देन है।
हरविंदर जी, ये तो आपने भाटापारा और उसके आसपास की जगहों के बारे में जानकारी, और हम जानना चाहेंगे कि अभी लगातार हम देखते जा रहे हैं कि पहले रेडियो से जुड़े लोग श्रोता सम्मेलन करते थे, फिर धीरे धीरे ये माध्यम आए, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, तो उस पे भी बहुत सारे लोग एक एक करके जुड़ते गए। तो एक बड़ा इस सोशल मीडिया ने श्रोताओं को जुड़ने का, लोगों को तो जोड़ा ही है उसमें श्रोता भी है, तो श्रोता आपस में जुड़ने का एक बड़ा सहज प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है। उस प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखते हैं और किस तरह की गतिविधियां श्रोताओं के बीच उन प्लेटफॉर्म पे होती है?
नहीं, ये वैसे आपस में वैचारिक संयोजन के लिए ये संचार माध्यम में जो अभी वर्तमान में व्हाट्सएप वगैरह जो चल रहे हैं और इसके माध्यम से कई ग्रुप स्थापित किए गए हैं और इसमें वैचारिक आदान प्रदान भी करते हैं लोग। लेकिन जहाँ तक मुझे महसूस होता है कभी कभी कि हमारे मित्रों के बीच में जो ओवर एक्साइटमेंट है किसी भी विषय को लेकर, बिना चिंतन के किसी भी विषय पर कुछ भी लिख देना या कुछ भी कह देना थोड़ा सा कभी कभी मन को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। अच्छा नहीं लगता कि भाई हम लोग आपस में ही अपने साथियों के बीच में ऐसी बातों को लेकर लंबी लंबी बातें करते हैं जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। ठीक है, अपन ये मानते हैं कि आपस में विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और मुझे तो ये भी कहने में गर्व होता है कि मैं रेडियो को अपने एक गुरु के रूप में मानता हूँ, क्योंकि रेडियो से जुड़ने के बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे ज्ञान का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि मैं अपनी भाषा में जो संशोधन कर पाया हूँ या जो भी परिष्कृत और परमार्जित हुई है मेरी भाषा, उसमें कहीं न कहीं रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है।
क्या बात।
और मैं सदैव ही एक गुरु के रूप में मानता हूँ अपने रेडियो को। मुझे बहुत खुशी होती है अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुन के।
वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया पर जो भी बातचीत होती है उसके प्रति अचिंतित हैं। और ये बात, ऐसी बातें लगभग मतलब हमारे दोस्तों के ग्रुप्स में भी होती है, परिवार में भी होती है, तो ये मान ले कि हाँ ये श्रोताओं का एक बड़ा परिवार है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें 19-20 होंगी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि रेडियो ने आपको संस्कारित किया है, भाषा की एक तहजीब दी है और सशक्त तर्कों का एक संबल दिया है, तो इस माध्यम से हम ये माने कि यहाँ भी सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आप बताएंगे आज?
मैं सर ये गीत है जो मेरी कहीं ना कहीं यदि बहुत गंभीर मन से इस गीत को सुना जाए तो कहीं ना कहीं मेरी जो भावनाएं हैं इस गीत में समाहित हैं। फिल्म संबंध का गीत है, आशा भोसले जी की आवाज है। तुमको तो करोड़ों साल हुए, पतलाओ गगन गंभीर, प्यारी प्यारी दुनिया में क्यों अलग अलग तस्वीर।
Thank you.
जगत पिता परमात्मा कर निर्मल मेरी आत्मा दुख हरो दयालु अब सुख दो सब अवगुण मेरे करो क्षमा प्रभु करो क्षमा प्रभु करो क्षमा हे जगत पिता परमात्मा
Thank you.
कुछ दिल पर रख कर पत्थर जीवन जीते कहीं मन पंछी आकाश उड़े कहीं पाँव पड़ी जंजीर इस प्यारी
बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं प्रकृति की पर्यावरण की और बहुत सारे अच्छे अनुभव भी हैं उन सभी के साथ। और रेडियो से जितने भी लोग जुड़े हैं चाहे वो प्रस्तोता हो चाहे श्रोता हो उनको रेडियो से जुड़ी हुई आवाज़ों को देखने का एक अलग आकर्षण होता है कि वो है ना कि बहुत जो पुराने श्रोता हैं उन लोगों के भी बहुत सारे किस्से हैं पता नहीं कितने किलोमीटर यात्रा करके वो प्रस्तुतकर्ता को उद्घोषक देखने जाया करते थे। तो ऐसे कौन से किस्से हैं आपके या ऐसी कौन सी बातें अपने दोस्तों की याद है आपको या वे कौन से प्रस्तुतकर्ता रहे हैं जिनको लगता था रेडियो पर सुनते हुए अरे इनसे मुझे मिलना है इनसे इनको मुझे छूना है।
ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मतलब मेरी भावनाओं को आपने जुबान दे दी है कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसी तारतम्य में एक जो आपने सम्मेलन का जिक्र किया था श्रोता सम्मेलन का तो ऐसे ही एक अवसर आया था भाटापारा में रेडियो श्रोता सम्मेलन करने का तो उस समय श्रोता सम्मेलन में प्रमुख आकर्षण होता था कि कोई भी स्थापित उद्घोषक
जी
उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में होते थे जो हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होते थे कि भाई यहाँ के सम्मेलन में ये अनाउंसर आ रहे हैं वो इस केंद्र से संबंध रखते हैं ये है उनको मतलब सुना है अब देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस आयोजन के लिए जब तिथि वगैरह तय होने के बाद में ये हुआ कि हमें भी कोई मुख्य अतिथि ऐसे ही जिनको हमने अपने सपनों में अपने यादों में संजोया हुआ है जिनको हम रूबरू होना चाहते हैं जिनसे मिलना चाहते हैं तो उस समय मेरे मन मस्तिष्क में एक सबसे पहला विचार आया कि मैं आदरणीय कमल शर्मा जी को भाटापारा सम्मेलन के लिए आमंत्रित करूं।
क्या बात है।
तो बहुत प्रयास के बाद में पहले उनसे संपर्क किया तो उन्होंने इस प्रकार के मतलब सार्वजनिक आयोजन से शामिल होने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की थी फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तत्काल अपनी सुविधा के हिसाब से मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई में विविध भारती जाकर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कर बात प्रार्थना की कि सर हमारा ऐसा ऐसा आयोजन है और मेरी बहुत दिली इच्छा है कि एक बार आप इस सम्मेलन में शामिल हों और यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत बड़ी सुखद अनुभूति होगी ये कार्यक्रम। उस समय बहुत कहने बोलने के पश्चात उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और वो एक विचित्र संयोग कहिए या मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा पुरस्कार था कि उस समय के विविध भारती के स्थापित दो माननीय उद्घोषक श्री कमल शर्मा जी और राजेंद्र त्रिपाठी जी
जी जी
दोनों उस कार्यक्रम के हिस्सा बने और आसपास के साथ साथ बहुत दूर दूर के महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से और राजस्थान वगैरह के सभी श्रोताओं ने भाग लिया। एक यादगार आयोजन रहा और उसमें बिलासपुर की टीम ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। वो समय तो निकल गया लेकिन यादें बिल्कुल आज भी तरोताजा हैं दिलो दिमाग में। जब भी इस टाइप के कहीं आयोजन होते हैं तो वो यादें बिल्कुल फिर से सामने हो आती हैं, वही चेहरे, वही सब श्रोताओं से मिलने का अवसर, अपनी वैचारिक आदान प्रदान अपनी भावनाओं से। और हम कहें कि भाई हमारे लिए तो वो किसी मल्टी स्टार हीरो से कम नहीं होते हैं अनाउंसर। चलचित्र में हीरो की होती है, वैसी रेडियो श्रोता के लिए अनाउंसर।
वाकई रेडियो से बोलने वालों का और रेडियो सुनने वालों का जो रिश्ता है वो बड़ा अनोखा रिश्ता है। सिर्फ आवाज से दोस्ती होती है और लोगों के दिलों में आप बस जाते हैं और लोग खूब प्यार करने लगते हैं आपसे।
जी बिल्कुल बिल्कुल।
इस प्यार के नाम कौन सा गीत?
बस मैं यही कहूंगा कि जो मेरे इस माध्यम के मेरे मन मंदिर के जो देवता हैं आदरणीय कमल शर्मा जी, जब वो सेवानिवृत्त हुए थे तो सेवानिवृत्ति पे उन्होंने ये अंतिम गीत अपने कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया था। वही गीत मैं आज अपने साथियों के साथ फिर से सुन के उन यादों को ताजा करना चाहूंगा। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं तो चलूं।
आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है। अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है, वहशत दिल मैं जरा होश में आ लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज मैं गैर हूं, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था। मेरी चाहत मेरी उल्फत से तुझे बैर न था, मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला लूँ तो चलूँ, मैं चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, और गए वक्त की मानिंद नहीं आऊंगा, फिर न आने की
कसम आज मैं खा लूं तो चलूं आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं मैं चला जाऊंगा मैं चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं तो चलूं मैं चला जाऊंगा।
क्या बात है, कमल शर्मा जी की बहुत सारी यादें हम सब के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस गीत के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अरपा रेडियो के लिए जो पंच लाइन कही है और अरपा रेडियो से भी ये छोटी सी ही सही प्रसाद स्वरूप अरपा रेडियो पर उनकी आवाज़ आती है। तो हरविंदर जी, वाकई आपने वो तमाम यादें रेडियो से जुड़ी हुई तरोताज़ा की और श्रोताओं तक ही भी पहुँची। अरपा रेडियो पर आपने समय दिया अपना, उसके लिए अरपा रेडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।
मैं सर एक अरपा रेडियो के माध्यम से जुड़े हुए सभी अपने श्रोता साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ।
जी जरूर।
एक तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको निश्चित रूप से जब तक इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी अंश उसका बाकी है वो सावधानियां बिल्कुल पूरी तरह वो निभाएं और अपने और अपने परिवार को इस महामारी से सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम श्रोता जो हैं एक लड़ी में यूं पिरो दिए जाएं कि उसमें सिर्फ हम ही हम दिखें, उसमें धागा ना दिखे।
क्या बात।
सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और अभिनंदन करता हूं कि वो रेडियो अरपा परिवार के हर सदस्य का सम्मान करें, क्योंकि जो इतने मेहनत से कार्यक्रमों को तैयार करते हैं उसके वो जो भी है ठीक है, अपनी अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद में हर कोई उस पर टिप्पणी करना चाहता है, लेकिन सकारात्मक टिप्पणी करें, बहुत अच्छा लगेगा, जिससे प्रस्तोता को भी बल मिलता है उसके अच्छे कार्यक्रम तैयार करने के लिए उसकी भावनाएं, और हमारी शब्दों से ही उनको प्रेरणा मिलती है।
जी बिल्कुल, आपकी भावनाएं हम तक भी पहुंच रही है और तमाम सुनने वाले श्रोताओं तक भी पहुंच रही है। और इसी नोट के साथ कि हम सबकी जो भावनाएं हैं वो एक ही है कि खूब अच्छा संगीत सुने, खूब अच्छी जानकारियां इकट्ठा करें। तो संगीत और जानकारी के साथ अरपा कम्युनिटी रेडियो और अरपा वेब रेडियो हमेशा आपके साथ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। अभी आपने सुना कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। इस सप्ताह के श्रोता थे भाटापारा से हरमिंदर सिंह चावला और इनसे बातचीत की सुनील चिपड़े ने।
सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।